दिन भर तारीख 9 अगस्त दिन मंगलवार। मैं हूं मोहन लाल शर्मा। 16 साल से अफस्पा के खिलाफ भूख हड़ताल कर रही मणिपुर की एरोम शर्मिला ने अपना व्रत तोड़ा, कहा बनना चाहती हूं मुख्यमंत्री।
My education is very very low. I know nothing about politics. I want to be the CM of Manipur.
सरकार कश्मीर में पैदा हुए हालात पर संसद में चर्चा कराने को तैयार। पाकिस्तान के क्वेटा सहित देश भर में वकीलों ने कल हुए आत्मघाती हमले के विरोध में निकाली रैलियां।
सारे वकला ने अपने कपड़ों पर ये सुर्ख खून की निशान डाला है कि हम सारे वकला न सिर्फ खून के आंसू रो रहे हैं।
कार्यक्रम में खबरें और भी होंगी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप सोनी से। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के विरोध में बीते 16 वर्ष से अनशन पर बैठी सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने आज अनशन खत्म कर दिया है। वर्ष 2000 में जब उन्होंने अनशन शुरू किया था, तब उन्हें आत्महत्या की कोशिश के आरोप में हिरासत में लिया गया था और तभी से उन्हें नाक में नली लगाकर जबरन आहार दिया जा रहा था। इरोम शर्मिला ने राजनीति में आकर हालात बदलने की इच्छा जताई है। अरुणाचल प्रदेश में पुलिस का कहना है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल ने आत्महत्या कर ली है। कलिखो पुल का शव आज सुबह राजधानी ईटानगर में उनके सरकारी आवास में पंखे से लटका पाया गया। कलिखो पुल के समर्थकों ने इस घटना के विरोध में ईटानगर में प्रदर्शन किया है। उन्होंने कुछ महीने पहले ही कांग्रेस की राज्य सरकार से विद्रोह कर दिया था, जिसके बाद उन्हें कुछ महीने के लिए मुख्यमंत्री भी बनाया गया था। 47 वर्षीय कलिखो के नजदीकी लोगों का कहना है कि वो अवसाद से जूझ रहे थे। तुर्की के राष्ट्रपति रिचेप तैयब अर्दोआन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सेंट पीटर्सबर्ग में मुलाकात कर रहे हैं। तुर्की में बीते हफ्ते तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के बाद राष्ट्रपति अर्दोआन की ये पहली विदेश यात्रा है। दोनों देशों के संबंधों में बीते साल तब खटास आ गई थी जब तुर्की ने सीरिया की सीमा पर रूस के एक विमान को मार गिराया था। तुर्की के राष्ट्रपति का कहना है कि दोनों देशों के संबंध अब बेहतर हो रहे हैं। रूस और तुर्की के संबंध एक वाकई सकारात्मक दौर में पहुंच चुके हैं। हम दोनों ही बड़े लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हमने जो कदम उठाए हैं उससे हमारा आपसी सहयोग और व्यापक होगा। तुर्की के राष्ट्रपति रिचेप तैयब अर्दोआन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन सेनाओं ने यमन की राजधानी सना में हूती विद्रोहियों पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। हवाई हमलों की वजह से राजधानी सना के हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है। ये हमले ऐसे वक्त हो रहे हैं जब बीते हफ्ते संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता में गतिरोध आ गया है। सऊदी गठबंधन के प्रवक्ता का कहना है कि सना में सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाया गया, लेकिन कुछ खबरों में कहा गया है कि इन हमलों में एक फैक्ट्री में काम करने वाले कम से कम 15 मजदूर भी मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि सीरिया के शहर एलेप्पो में भीषण लड़ाई की वजह से वहां रहने वाले लोग बिजली और पानी के लिए तरस रहे हैं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर और मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि आपने समाचारों में संदीप सोनी से सुना, मणिपुर में लागू सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून के खिलाफ 16 सालों से भूख हड़ताल कर रही मणिपुर की इरोम शर्मिला ने आखिरकार अपना व्रत तोड़ दिया। 16 साल पुरानी इस व्रत को उन्होंने 4:20 पर तोड़ा। इरोम मणिपुर में अफस्पा यानी कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के खिलाफ अनशन कर रही थी, जो कि राज्य में अभी भी जारी है। इरोम शर्मिला ने कहा कि उनका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है और अब वो मणिपुर की मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। इससे पहले इरोम को अदालत में जमानत पर रिहा किया गया था। सुबह अदालत और उसके बाद इरोम शर्मिला के अनशन तोड़ने तक के सभी पहलुओं को समेटा है बीबीसी संवाददाता वंदना ने, जो कि इस समय इम्फाल में मौजूद है।
शहद का छोटा सा कतरा और आज इरोम शर्मिला की 16 साल लंबी हड़ताल मानो एक पल में खत्म हो गई। पूरी दुनिया के सामने कैमरों की फ्लैशलाइट के बीच।
I bring up my purse. I want to bring something.
लेकिन इरोम के लिए भूख हड़ताल तोड़ने से पहले के वो चंद लम्हे बहुत मुश्किल और भावुक करने वाले थे। हाथ में शहद का चम्मच था, लेकिन उसे होंठों तक ले जाने में इरोम की आंखें नम थी। लंबी सांस और कांपते हाथों से उन्होंने शहद चखा और हड़ताल तोड़ी। कहा, ये लम्हा मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी।
I will never forget this moment.
अपनी भावनाओं को समेटते हुए इरोम ने कहा कि मणिपुर की राजनीति बहुत गंदी है, लेकिन वो उसमें उतरना चाहती हैं।
I want to be the CM of Manipur.
मैं मणिपुर की मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ। मैं राजनीति नहीं समझती, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, लेकिन कुछ करना चाहती हूँ, खासकर आफ्सपा कानून को लेकर।
इरोम पिछले 16 साल से अपनी ही माँ से नहीं मिली है, जो वहाँ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर रहती हैं। भूख हड़ताल तोड़ने के बाद भी इरोम अपने प्रण पर कायम है।
मैं तब तक अपनी माँ से नहीं मिलूंगी जब तक कि मैं अपने असल लक्ष्य को हासिल ना कर लूं, जो है आफ्सपा को हटाना।
इससे पहले दिन में इरोम शर्मिला को सुबह इम्फाल की अदालत में लाया गया, जहां मजबूती से उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मेरे जमीर को जैसे कैद कर लिया गया है, अब मैं आज़ादी चाहती हूँ। साल भर एकदम तन्हा जिंदगी बिताने वाली इरोम शर्मिला को देखने कोर्ट में खचाखच भीड़ थी। उनके मीडिया के सामने आते ही ऐसा हंगामा मचा कि इरोम को वहां से हटा लिया गया, नारेबाजी धक्का मुक्की के बीच। इरोम शर्मिला के बड़े भाई और उनका हर कदम पर साथ देते रहे इरोम सिंहजीत सिंह भी बहन के इस अहम दिन पर सुबह सवेरे कोर्ट पहुंचे और पुराने दिनों को याद किया।
जेल पे जाकर मैंने मिला था, वो 11 तारीख है नवंबर का। उसी दिन शर्मिला ने मुझे बताया, भैया मैं एक मैतेई मणिपुरी नारी है। मैंने मेरा डिसीजन बहुत बहुत सोच के सोचने के बाद मैंने फाइनलाइज किया, डिसाइड किया। तो मुझे कुछ करेज देना हो तो मेरा पास आ जाओ, और मुझे वापस करने के लिए हो तो आज की विजिट वो आखिरी होना चाहिए। उसी दिन मैंने भी प्रोमिस किया था, ठीक है तू भी भूख हड़ताल चलते रहो, आपकी आखिरी सांस तक तुम्हारा करेज तुम्हारा हिम्मत साथ रहो, मैं भी आज की बात तुम्हारा साथ रहूँगा।
16 साल से मैंने आपने लोगों ने इरोम शर्मिला को नाक में नली लगाए कोर्ट से आते जाते या अस्पताल में जाते हुए ही देखा है। आज पहली बार इरोम को उस नली के बगैर देखना एक अजीब सा अनुभव था। खैर, इम्फाल के अस्पताल में हम मीडिया वालों से विदा लेते हुए इरोम वापस चली गई। उन्हें बहुतों से मिलना होगा, कुछ बातें अपनी कहनी होगी, कुछ सुननी होंगी। आखिर 16 सालों का हिसाब जो उनको करना है। वंदना, BBC इम्फाल।
और अब आपको बताते हैं कि कैसे इरोम शर्मिला सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी कि आफ्सपा के खिलाफ आवाज बन गई। तारीखों के हवाले से सुनिए अजय शर्मा से और श्वेता से।
सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी आफ्सपा। आफ्सपा को सितंबर 1958 में औपचारिक तौर पर कानून बनाया गया। इस कानून के तहत केंद्रीय और राज्य सरकारों के पास किसी भी इलाके को विवादास्पद इलाका घोषित करके सेना बलों को उस इलाके में अतिरिक्त शक्तियां दे दी जाती हैं, जिसके बाद सैन्य कर्मी बिना किसी वारंट के किसी को भी शक के बिना पर मार सकते हैं या गिरफ्तार कर सकते हैं। साथ ही साथ सेना को कानूनी कार्रवाई से भी मुक्ति मिल जाती है।
2 नवम्बर 2000, खबरों के मुताबिक बस स्टैंड पर इंतजार कर रहे 10 लोगों को गोली मार दी गई। इसे मालूम नरसंहार का नाम दिया जाता है और इस नरसंहार की जिम्मेदारी भारतीय सेना की टुकड़ी आसाम राइफल्स पर डाली जाती है।
5 नवंबर 2000, इरोम शर्मिला जो उस समय 28 साल की थी, इस नरसंहार के विरोध में और मणिपुर से आफ्सपा हटाए जाने पर अनशन शुरू करती हैं और कहती हैं कि इस विवादास्पद कानून के हटने तक वो ना कुछ खाएंगी, ना पिएंगी, ना अपने बाल बनाएंगी और ना ही शीशा देखेंगी।
तीन दिन बाद ही पुलिस उन्हें आत्महत्या की कोशिश करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। खाना न खाने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और नाक में नली लगाकर उनके शरीर में पौष्टिक आहार पहुंचाने की प्रक्रिया होती है ताकि वो बिना खाए पिए भी जिंदा रह पाएं।
इसके बाद से शर्मिला कई बार जेल गईं। 2004 तक इरोमजानू मणिपुर के लोगों के अफ्सपा के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन चुकी थी।
2 अक्टूबर 2006 को इरोम शर्मिला अपने प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट आई। इसके बाद वो छात्रों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ जंतर मंतर पर आफ्सपा हटाए जाने के लिए विरोध प्रदर्शन पर बैठी।
इस विरोध प्रदर्शन में उनका साथ देने के लिए 30 औरतों ने निर्वस्त्र होकर असम राइफल्स के मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
6 अक्टूबर को उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया। वहां से उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और साथ ही साथ गृह मंत्री को भी इस मुद्दे पर चिट्ठी लिखी। इस दौरान नोबेल पुरस्कार विजेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता शीरीन इबादी ने भी उन्हें अपना सहयोग देते हुए कहा कि वो इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति के समक्ष उठाएंगी।
2011 में उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे को मणिपुर आने का न्योता दिया। अन्ना हजारे ने अपने 2 प्रतिनिधियों को मणिपुर भेजा।
अक्टूबर 2011 में मणिपुर प्रदेश अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने शर्मिला को अपना समर्थन देने की बात कही थी और पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी से इस कानून को हटाने में मदद करने को कहा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी शर्मिला के संघर्ष को अपना समर्थन देने की बात कही। अपने अनशन के 11 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक बार फिर इस मुद्दे पर कदम उठाने के लिए कहा।
अनशन की शुरुआत के बाद इरोम शर्मिला सिर्फ एक बार अपनी माँ से मिली है। उन्होंने कहा है कि अफ्सपा के हटने के बाद वो उनके हाथों से चावल खाएंगी।
जनवरी 2013 में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज एन संतोष हेगड़े की अगुवाई में बनी एक उच्च स्तरीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कई मामलों में मारे गए लोगों के खिलाफ कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिले थे।
2014 में मणिपुर के 7 चुनाव क्षेत्रों से अफ्सपा हटा लिया गया था। राज्य में ये अब भी लागू है। पिछले साल दिसंबर में मणिपुर सरकार ने राज्य को दिया विवादित इलाके का दर्जा 1 साल के और बढ़ा दिया।
16 साल से भूख हड़ताल कर रही मणिपुर की इरोम शर्मिला ने अपना व्रत तोड़ा। पूर्वोत्तर का एक और राज्य अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कालिको पुल ने आत्महत्या कर ली है। उनका शव संदिग्ध हालत में उनके घर पे पाया गया। राजनीति में आने के बाद पुल 1995 से लगातार 5 बार विधायक रहे और कई बार मंत्री भी बने। इस साल 19 फरवरी को बीजेपी के समर्थन से राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था। विस्तृत रिपोर्ट अगले कार्यक्रम यानी कि घटना चक्र में हम आपको सुनाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर पर। सरकार कश्मीर में पैदा हुए हालात पर संसद में चर्चा कराने को तैयार हो गई है। कश्मीर मुद्दे पर राज्यसभा में कल चर्चा होगी, जिसमें गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे और सदस्यों के सवालों का जवाब देंगे। विपक्ष इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा है। संसद में क्या कुछ हुआ, सुनिए सलमान रावी की रिपोर्ट में।
राज्यसभा में विपक्ष के सदस्य कश्मीर मुद्दे पर चर्चा की मांग सोमवार से ही कर रहे थे, मगर मंगलवार को भी जब इस पर चर्चा शुरू नहीं हुई तो कुछ देर तक सदन में शोरगुल होने लगा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद का कहना था कि सरकार को चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर में सामान्य हालात बहाल करने के लिए सबको साथ लेकर चले।
तो मैं नहीं समझता कि पार्लियामेंट तमाशाई बन के बैठ सकता है और तमाशा देखेगा। कम से कम इस हाउस में, दूसरे हाउस में, पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट के 2 दिन रह गए सर। सर 2 दिन या तो गवर्नमेंट बाय करना चाहती है टाइम के, अभी टालो 2 दिन और उसके बाद पार्लियामेंट खत्म होगी, फिर कोई शोर नहीं उठाएगा, कोई बहस नहीं होगी। हमारी मांग है कि आज जैसे वादा किया था कल सरकार ने कि आज बहस हो। बहस में हम सुझाव भी देंगे, गलतियां हुई हैं पास्ट में। मैं जब चीफ मिनिस्टर था उस वक्त भी बहुत हालात खराब हुए। जब उमर साहब थे और हमारी और उमर साहब की कोलिशन गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी हालात खराब हुए।
जनता दल यूनाइटेड के नेता शरद यादव का कहना था कि सरकार सिर्फ पीडीपी को साथ लेकर कश्मीर में पैदा हुए हालात से निपटना चाहती है, जबकि सारा विपक्ष सरकार की मदद करने को तैयार है।
ये भी पता नहीं कि आपकी रणनीति क्या है, कश्मीर को किस तरह से आप फौज और पुलिस के दम पर ही इसको ठीक करना चाहते हैं। यानी ये सारी चीज जो है वो अकेले आपकी पार्टी या एनडीए या पीडीपी, इसको छोड़कर के पूरा देश आपने छोड़ कर रखा है।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी ने कहा कि 2010 में भी जब जम्मू कश्मीर में हालात बेकाबू हो रहे थे तो वहां पर भी सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधिमंडल गया था। वहीं बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने इस मुद्दे पर सदन में प्रधानमंत्री के बयान की मांग की।
तो पार्लियामेंट के दौरान हाउस के बाहर जाकर तो जो कुछ उन्होंने बोला है, यदि वही बात वो हाउस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बोलते तो मैं समझती हूँ कि ज्यादा अच्छा होता। उन्होंने ये बात पार्लियामेंट
ऊपरी सदन में चर्चा का जवाब देते हुए संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आश्वासन दिया कि जम्मू कश्मीर के हालात पर सरकार बुधवार को चर्चा कराने के लिए तैयार है।
सदन की भावना और सदन के नेताओं का जो उसमें विचार है वो प्राथमिकता है। अभी हमने बात
अभी 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 के अभी सुनिए
आप हमारे
सुनिए सुनिए
हम जवाब देते हैं संतुष्ट होंगे।
सुनिए सुनिए
तो हमने अभी ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से जो अभी क्वेश्चन आवर चल रहा है लोकसभा में उनसे जानकारी ली तो वो कल के लिए चर्चा के लिए तैयार हैं और कल की चर्चा तय कर लिया।
उम्मीद की जा रही है कि कल ऊपरी सदन में चर्चा के बाद सरकार सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल को जम्मू कश्मीर भेजने की घोषणा कर सकती है। सलमान रावी, BBC दिल्ली।
और अब रुख मध्य प्रदेश का, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार कश्मीर के लिए हर वो काम करने को तैयार है जो कि कश्मीर की बेहतरी के लिए होगा। प्रधानमंत्री अलीराजपुर जिले के भाबरा कस्बे में बोल रहे थे जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भी है। सुनिए सुरहनी आजी की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने पर केंद्रित 70 साल आजादी याद करो कुर्बानी अभियान की शुरुआत के लिए अलीराजपुर जिले के भाबरा में थे। वहां सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कश्मीर के मौजूदा हालात पर बात की। उन्होंने कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोग कश्मीर की परंपरा को ठेस पहुंचा रहे हैं। उन्होंने वहां के नौजवानों के बारे में बोलते हुए कहा कि कुछ लोग नौजवानों को राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने उन बच्चों के बारे में चिंता जाहिर की।
कभी कभी क्रिया हो, जिन बालकों के हाथ में, जिन युवकों के हाथ में, जिन बच्चों के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, जिन बालकों के हाथ में वॉलीबॉल का बॉल होना चाहिए, क्रिकेट का बैट होना चाहिए, मैदानों में मस्ती से खेल होना चाहिए, हाथ में किताब होनी चाहिए, मन में सपने होने चाहिए, आज ऐसे निर्दोष बालकों के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए जाते हैं। कुछ लोगों की राजनीति तो चल पाएगी लेकिन मेरे इन भोले भाले बालकों का क्या होगा, मेरे इन भोले भाले बच्चों का क्या होगा।
नरेंद्र मोदी ने कहा कि कश्मीर देशवासियों के लिए स्वर्ग भूमि है और हर भारतवासी वहां जाना चाहता है, लेकिन कुछ गुमराह लोगों की वजह से वहां दिक्कतें पैदा हो रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो आजादी बाकी हिंदुस्तानियों को मिली है वो कश्मीर के लोगों को भी मिली है। कश्मीर के मामले में सरकार वही नीति अपना रही है जो अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनाया था। उन्होंने कहा कि कश्मीर को केंद्र सरकार हर हालत में मुख्य धारा में लाना चाहती है।
शांति, एकता, सद्भावना, और मैं खास करके कश्मीर के युवकों को आह्वान करता हूं, आइए मेरे दोस्तों, आइए हम सब मिलकर के कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग बना करके रखे, इस सपने को लेकर के चले। आइए बहनों, और इसलिए इंसानियत, कश्मीरियत, इसको दाग नहीं लगने दिया जाएगा, इसको चोट नहीं पहुंचाने दी जाएगी। जमहूरियत का रास्ता ही है, बातचीत का रास्ता है, संवाद का रास्ता है, लोकतंत्र के उसूलों का रास्ता है।
कश्मीर मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों की भी तारीफ नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने कहा कश्मीर के मसले पर सभी राजनीतिक दल एक ही स्वर में बोल रहे हैं, यही हमारे देश की ताकत है। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने चंद्रशेखर आजाद के गांव पहुंचकर अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली पहुंचे, जबकि इससे पहले आदिवासी बहुल अलीराजपुर और झाबुआ में देश के 5 प्रधानमंत्री आ चुके हैं। शुरहन्याजी, BBC न्यूज, भोपाल।
आप सुन रहे हैं BBC हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर। चर्चा पाकिस्तान की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में हुए आत्मघाती धमाके में मृतकों की तादाद 71 तक पहुंच चुकी है। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि धमाका कल सुबह शहर के सिविल अस्पताल के बाहर हुआ था। पाकिस्तान तालिबान से अलग हुए गुट जमात उल अहरार और इस्लामिक स्टेट दोनों संगठनों ने इस धमाके की जिम्मेदारी ली है। आज पूरे पाकिस्तान में वकीलों ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया, हड़ताल की। क्वेटा समेत देश भर के वकीलों ने आज अदालती कार्यवाही का बहिष्कार किया, जबकि देश के विभिन्न शहरों में वकीलों ने विरोध रैलियां निकाली। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न बेंच में भी अदालती कार्यवाही नहीं हुई। लाहौर में वकीलों ने प्रदर्शन से पहले अपने कमीजों पर लाल रंग लगाया।
हमने भी इसीलिए अपने यहाँ सारे वकला ने अपने कपड़ों पर ये सुर्ख खून की हमने एक सिंबॉलिक निशान डाला है कि हम सारे वकला न सिर्फ खून के आंसू रो रहे हैं बल्कि हमारा अज़्म, हमारा जज्बा, हमारी कुव्वत, हमारी ताकत पहले से ज़्यादा मजबूत होकर इंशाअल्लाह उभरेगी। हम उनको पैगाम देना चाहते हैं कि हम उनके आखिरी दम तक, आखिरी कोने तक, आखिरी बिल तक, आखिरी हिसार तक उनके पहुँचेंगे और इंशाअल्लाह ये कौम के शाना बशाना खड़ा होकर हम हर दहशतगर्द को उसके कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे।
क्वेटा में अस्पताल के धमाके में जो लोग निशाना बने उनमें ज्यादातर वकील थे। रहमतुल्ला खान ने भी अपने साथी वकील को धमाके में खो दिया। वो कहते हैं,
जो हमारे सारे साथी थे बेचारे, हर वक्त का उनके साथ मिलना जुलना बैठना हर वक्त का साथ था। और इसमें मजीद क्या कहूँ, ये तो प्लानिंग चली आ रही है जनाब कि एक ब्लास्ट हो फिर दूसरा हो, कितनी जाने जा चुकी हैं। बज़ाहिर तो हुकूमत का फेलियर लग रहा है, अब देखिए गम से दिल फटा जा रहा है और मजीद क्या कहूँ जनाब, इसमें बहुत बुरे हालात।
दिन भर क्वेटा में आज क्या कुछ हुआ जानने के लिए मैंने अब से कुछ देर पहले बात की वहाँ पर मौजूद बीबीसी उर्दू संवाददाता इरम अब्बासी से।
जी आज तो क्वेटा में जो है वो शटर डाउन हड़ताल की जा रही है और वकला ने भी कल ही ऐलान कर दिया था कि वो जो है प्रोटेस्ट करेंगे 3 दिन अगले, क्योंकि ये पहला वाकया नहीं है कि कोई सीनियर वकील जो है उनको इस तरह दिन दहाड़े गोलियां मार के हलाक कर दिया गया। अगर हम क्वेटा की बात करें तो एक सिस्टमैटिक हमें वायलेंस नजर आई है वकला के खिलाफ यहाँ पर। इससे पहले एक हफ्ता पहले ही एक और वकील जब हलाक हुए तो इन्हीं ने, जो बलोचिस्तान बार एसोसिएशन के सदर हैं अनवर बिलाल कासी, उन्होंने प्रोटेस्ट का ऐलान किया था और बहुत सख्त बयान दिया था कि वकला को जो है तहफ़ फराहम किया जाए और उसके कुछ ही दिन बाद हमने ये देखा कि उन्हें गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया है। इस वक्त क्वेटा में फजा जो है वो सोगवार है। मैं क्योंकि कासी साहब के घर गई और वहाँ पे मेरी उनके बच्चों से भी मुलाकात हुई और वहाँ पर जो है इस वक्त एक सियासी सरगर्मियां भी चल रही हैं, क्योंकि जब मैं वहाँ पे थी तो वहाँ पे जो वजीर आला जो है बलोचिस्तान के वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उनसे जब मैंने पूछा कि क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है तो उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि ये कोई इंटेलिजेंस फेलियर था। और अगर आप गुज़श्ता रोज का उनका बयान देखें तो उसमें उन्होंने ये भी इशारा दिया था कि इस हमले के पीछे जो है वो इंडिया की स्पाई एजेंसी रॉ जो है उसके इम्कान को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो क्वेटा में इस वक्त जो है फिजा जो है वो सोगवार है और लोग जो है इतने ज्यादा जनाजे उठा रहे हैं। सिर्फ 55 जो लोग हलाक हुए हैं वो लॉयर्स थे, बाकी 71 जो है हमें अभी तक पता चला है कि उनकी हलाकत की खबर जो है वो आ चुकी है और मजीद 28 जो है वो इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन में जख्मी जो है।
आप अस्पताल भी गई होंगी, वहाँ पर आपने हालचाल देखा होगा, तो अस्पताल का सूरत हाल क्या है?
जी अस्पताल में मेरे जाने से कुछ देर पहले ही वहाँ पर इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उन्होंने वहाँ का दौरा किया, मरीजों से वो मिले और जो कुछ मरीज क्रिटिकल हालत में थे उनको कराची मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन वो एरिया जहाँ पे बम धमाका किया गया था उस वक्त जबकि वकला वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने बार एसोसिएशन सदर की हलाकत का, वो जहाँ पर मौजूद थे, मैंने उस जगह का भी दौरा किया। उसको जो है वो घेरे में पुलिस ने ले लिया है और उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है उस एरिया को। लेकिन वहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन है वो अभी भी आया है, आपको वहाँ पर किर्चियाँ नजर आ रही हैं दीवारों पर, जो है आप बड़ी वाजे तौर पर देख सकते हैं कि गोलियों के या जो बम धमाके में सो आपको डिस्ट्रक्शन वहाँ पे काफी विजिबल है। लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है क्योंकि बहुत सियासी शख्सियात जो है वहाँ का दौरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो आम शहरी है उनके लिए वहाँ आमदोरफ्त जो है वो थोड़ी सी मुश्किल बन गई है।
सरकार जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो कहाँ तक पहुँची है, क्या ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की बात कही है?
जी बिल्कुल, बलोचिस्तान की जो पुलिस है उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त درخواست کی ہے کہ ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنائی جائے تاکہ یہ پتہ کیا جا سکے کہ اس بم دھماکے کے پیچھے جو ہے وہ کون لوگ تھے، کون لوگ ملوث تھے، تاکہ ان کو پکڑا جا سکے. اور جب میری سی ایم بلوچستان سے بات ہوئی تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بلوچستان ایک کانسٹرکٹ زون ہے اور ان کی حکومت جو ہے وہ بالکل بے بس نہیں ہے، لیکن وہ پوری کوشش کرے گی کہ جتنے بھی وہ ایلیمنٹس، چاہے وہ فورن ایلیمنٹس ہیں یا ملک کے اندر جو اس طرح کے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں، ان کی روک تھام کے لیے اور ان کو جو ہے مزید ڈسٹرکشن سے روکنے کے لیے ایک جامع پلان بنایا جا سکے.
کوئٹہ حملے کے بعد وہاں کیا کچھ چل رہا ہے، جانکاری دے رہی تھیں بی بی سی اردو سنواداتا ارم عباسی.
دن بھر شارٹ ویو 41، 31 اور 25 میٹر بینڈ، یعنی 7,565، 9,460، 9,510 اور 11,795 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو 1413 کلو ہرٹز پر.
اور ریو سے اپڈیٹ کے لیے ہم ایک بار پھر سے آپ کو سیدھے وہاں پر ریو لے چل رہے ہیں، جہاں پر کی موجود ہیں کھیل پترکار نورس پریتم. نورس، بتائیں کیا چل رہا ہے وہاں پر؟
دیکھیں، صبح صبح یہاں پہ پہلی ایونٹ جو تھی اس میں روئنگ کی، جس میں بھارت کے دتو بھولکنال جو تھے وہ کوالیفائی نہیں کر سکے سیمی فائنل، لیکن کوارٹر فائنل میں انہوں نے بہت اچھا کرا اور کافی تعریف ہوئی ان کی پردرشن کے لیے. ساتھ ہی ابھی اس وقت یہاں پر ارجنٹینا کا ہاکی سے میچ چل رہا ہے اور بھارت ایک گول سے آگے، ایک ماتر گول چنگل سینا سنگھ نے کیا. لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آدھے سے زیادہ بھارتی جرنلسٹ جو ہیں ابھی راستے میں اٹکے ہوئے ہیں، وہ کسی گراؤنڈ میں پہنچ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ پروٹیسٹ چل رہا ہے کچھ یہاں پہ لوکل اور کافی پولیس لگی. اور اگر آپ سن سکے تو میرے پیچھے آواز آ رہی ہوگی، اولمپک پارک کے اوپر اس وقت چاپرز بھی گھوم رہے ہیں، تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. کسی کو ہم نے لوکل جرنلسٹ سے بھی پوچھا، ان کو بھی پتا نہیں کیا ہو رہا ہے. تو سب لوگ راستے میں رکے ہوئے ہیں، بہت کوئی نہیں پہنچ پا رہا ہے وینیوز کے اوپر. ہم ادھر ادھر سے انفارمیشن جٹا کر آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں.
دراصل نورس، وہاں پر دو طرح کے پردرشن چل رہے ہیں، ایک تو جو ڈیلما روسف ہیں ان کے خلاف پردرشن چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اولمپک کے آیوجن کو لے کر بھی وہاں پر کچھ ودروہ پردرشن چل رہے ہیں، تو اسی سے لگتا ہے آپ کا سامنا ہو رہا ہے. تو بھارت کی نگاہیں اب کس پر ہیں؟
اب اس وقت آج ایسا کوئی ایونٹ خاص نہیں ہے جس میں میڈل کی امید ہو، میڈل کا ہے ہی نہیں. شام کو وکاس کرشن جو ہیں وہ باکسنگ میں 75 kg میں لڑیں گے شام کے لوکل ٹائم سے قریب 6:30 بجے. وہ مجھے لگتا ہے ایک اچھی باؤٹ ہوگی، اور اگر وہ آج جیت جاتے ہیں تو ان کا آگے کا راستہ جو ہے وہ میڈل کے لیے مجھے لگتا ہے تھوڑا سا آسان ہو جائے گا. وہی ایک ایونٹ ہے جس میں ہم آج سب بھارت کی نگاہیں ہیں.
بہت بہت شکریہ نورس پریتم، سیدھے ریو سے کارکرم میں شامل ہونے کے لیے. اور میرے سامنے رجت چاندنا موجود ہیں. رجت، آپ کے پاس باقی کی کھیل کی خبر کیا ہے؟
جی بالکل، ریو سے رخ کرتے ہیں ویسٹ انڈیز کی طرف. بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ تیسرے ٹیسٹ میچ میں ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ لیا، اور بھارت کی شروعات اچھی نہیں ہوئی. شکھر دھون پہلے بلے باز جلدی ہی آؤٹ ہو گئے، وہ ایک رن ہی بنا پائے. اس کے علاوہ وراٹ کوہلی اور لوکیش راہل ابھی بھی کریز پر جمے ہوئے ہیں. وہیں ویسٹ انڈیز اور بھارت کے بیچ امریکہ کے فلوریڈا میں ہونے والی دو میچوں کی T20 سیریز کے لیے ویسٹ انڈیز نے 13 سدسیہ دل کی گھوشنا کر دی ہے، جس کی کمان آل راؤنڈر کریگ بریتھویٹ کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے. T20 کی اس ورلڈ چیمپئن ٹیم میں کرس گیل، آندے رسل، ڈوین براوو، سنیل نارائن جیسے دگج بھی شامل کیے گئے ہیں، جبکہ ویسٹ انڈیز کو دو بار ورلڈ T20 چیمپئن بنانے والے ڈیرن سامی کی کپتانی انہیں نہیں دی گئی، اور وہ ٹیم سے بھی باہر کر دیے گئے ہیں.
بہت بہت شکریہ رجت چاندنا. اور اس سے پہلے کے کارکرم میں ہم آپ سے ودا لیں، مکھیہ سماچار ایک بار پھر سے سن لیتے ہیں.
بی بی سی سماچار. بھارت کے پوروتر راجیہ منی پور میں سشستر بل وشیش ادھیکار ادھینیم کے ورودھ میں بیتے 16 ورش سے انشن پر بیٹھی ساماجک کاریکرتا ایروم شرمیلا نے آج انشن ختم کر دیا ہے. اروناچل پردیش میں پولیس کا کہنا ہے کہ راجیہ کے پورو مکھیہ منتری کلیکھو پل نے آتم ہتیا کر لی ہے. ان کا شو آج صبح راجدھانی ایٹا نگر میں ان کے سرکاری آواس میں پنکھے سے لٹکا پایا گیا. ترکی کے راشٹرپتی رجب طیب اردوان روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتن سے سینٹ پیٹرسبرگ میں ملاقات کر رہے ہیں. ترکی میں بیتے ہفتے تختہ پلٹ کی ناکام کوشش کے بعد راشٹرپتی اردوان کی یہ پہلی ودیش یاترا ہے. سعودی عرب کے نیتتو والی گٹھبندھن سیناؤں نے یمن کی راجدھانی سنا میں ہوتی ودروہیوں پر ہوائی حملے تیز کر دیے ہیں. بی بی سی سماچار.
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर के संक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे रवि कुमार। घटना चक्र लेकर हम फिर से उपस्थित होने वाले हैं, तब तक आप हमारा इंतजार कीजिए और हमें आपका इंतजार रहेगा। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।